नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर, ये सब वन में चले गए। नारद जी ने आकर पहले के राजाओं के विषय में बताया कि वो राजा आए, वो राजा आए, वो भी राज छोड़कर आए। तो वहां धृतराष्ट्र किस लोक को जाएंगे, ये प्रश्न किया गया। ब्राह्मणों ने पूछा नारद जी से, तो नारद जी ने कहा कि पहले तो कुबेर के घर जाएंगे, फिर वहां से सम्मानित होकर देवता, गंधर्व और राक्षसों के लोकों में स्वेच्छानुसार विचरण करेंगे, फिर सब इनका पाप जब भस्म हो जाएगा फिर ये देवताओं के वहां जाकर रहेंगे स्वर्ग में। ये गुप्त विचार है, मुझे कहना नहीं चाहिए था, कह दिया। सबको संतुष्ट किया और नारद जी वहां से चले गए। इधर पांडव लोग, धृतराष्ट्र, ये इतनी कथा कल तक हो गई। इधर पांडव लोग धृतराष्ट्र के वन में चले जाने के बाद बड़े दुखी हो गए। उन्हें माता का विछोह का तो बहुत ही कष्ट होता रहा। पूर्वासी मनुष्य भी धृतराष्ट्र के लिए निरंतर शोक मग्न रहते थे। ब्राह्मण लोग सदा धृतराष्ट्र के संबंध में चर्चा करते रहते थे कि हाय बूढ़े और अंधे धृतराष्ट्र निर्जन वन में कैसे रहेंगे। आंखों पर पट्टी बांधी हुई साम्राज्ञी गांधारी और उनकी सेवा में रहने वाली कुंती भी किस तरह दिन व्यतीत करेगी। लोगों के द्वारा जब इस प्रकार की, पांडव तो वैसे भी शोकमग्न, फिर इनके शोक की कोई सीमा भी नहीं रही। अपनी बूढ़ी माता के लिए इतनी चिंता हुई कि वे अधिक काल तक नगर में नहीं रह सके। उनको धृतराष्ट्र की भी याद आती है, गांधारी की भी याद आती है, विदुर जी की भी विशेष याद आती है। उनका मन राजकाज में लगता ही नहीं था, न महल में लगता था, न वेदाध्ययन में लगता था, किसी काम में उनकी रुचि नहीं थी। निरंतर चिंता में डूबे रहने के कारण उनको शांति नहीं थी। शोक ने मानो उनके हृदय में अपना घर बना लिया था। किसी भी वस्तु को पाकर वे प्रसन्न नहीं होते थे। कोई आकर उनसे किसी प्रकार की बात करता तो भी वे उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देते। वे बहुत डूबे डूबे से रहने लगे, सुध-बुध खो दिए। एक दिन अपनी माता को याद करके वे आपस में कहने लगे, हाय मेरी मां कुंती अत्यंत दुर्बल हो गई, वे उन दोनों बूढ़ों को कैसे निभाएगी। शिकारी जंतुओं से भरे हुए जंगल में आश्रयहीन राजा धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी के साथ अकेली कैसे रहते होंगे। जिनके बांधव मारे गए वे मां भागा गांधारी देवी उस निर्जन वन में अपने अंधे और बूढ़े पति की सेवा किस प्रकार करती होंगी। इस प्रकार बात करते करते मन में बड़ा उच्चाटन हो गया। उन्होंने धृतराष्ट्र के दर्शन की इच्छा से वन में जाने का विचार किया। उस समय सहदेव ने राजा युधिष्ठिर को प्रणाम करके कहा, भैया जान पड़ता है आपका मन कुछ उत्पीड़ित है, कुछ शोक में डूबे हुए हैं, तपोवन में जाने के उत्सुक हैं क्या? यदि है तो ये बड़ी खुशी की बात है। मेरे भी बहुत दिनों से चलने की इच्छा थी, पर संकोच के कारण से आपको स्पष्ट रूप से कह नहीं सका। बड़ा सौभाग्य है यदि आपका तपोवन में जाने का मन हो तो मुझे भी अपने साथ ले चलने के लिए आज्ञा दीजिए। माता कुंती तपस्या में लगी होंगी, उनके सिर के बाल जटा के रूप में परिणित हो गए होंगे, उनका वृद्ध शरीर कुश और कास के आसनों पर शयन करने के कारण क्षत विक्षत हो गया होगा। मेरा भी मन तपोवन में जाने के लिए बड़ा उत्सुक हो रहा है। माता कुंती की बड़ी याद आती है। माता कुंती तपस्या में लगी होंगी, सिर के बाल जटा के रूप में परिणत हो गए होंगे और उनका वृद्ध शरीर कुश और कास के आसनों पर शयन करने के कारण क्षत विक्षत हो गया होगा। उनका दर्शन पाकर मैं अपना अहोभाग्य समझूंगा। सहदेव की बात सुनकर द्रौपदी देवी राजा का सत्कार करके उन्हें प्रसन्न करते हुए बोली, नाथ मुझे अपनी सास के दर्शन कब होंगे? वे अभी तक जीवित भी है कि नहीं? यदि वे जीवित हों और उनके चरणों का दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिल जाए तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। अंतःपुर की सभी बहुएं वन में जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए खड़ी है। सबके मन में कुंती, गांधारी और ससुर जी के दर्शन की उत्कंठा है, केवल आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा है। द्रौपदी के ऐसा कहने पर राजा युधिष्ठिर ने सारे सेनापतियों को बुलाकर कहा, तुम लोग बहुत से रथ और हाथी घोड़ों से सुसज्जित होकर सेना के कूच करने की तैयारी करो। मैं वनवासी महाराज धृतराष्ट्र का दर्शन करने के लिए चलूंगा। अब राजा जाए तो साथ में सेना जानी चाहिए, इसलिए सेना साथ में। इसके बाद उन्होंने रनिवास के अध्यक्षों को आज्ञा दी, तुम सब लोग भांति भांति के वाहनों और पालकियों को हजारों की संख्या में तैयार करो, उनमें आवश्यक सामान लाद दो, छकड़े, बाजार, दुकान, खजाना, कारीगर, कोषाध्यक्ष, ये सब कुरुक्षेत्र के आश्रम की ओर रवाना हो जाने चाहिए। नगरवासियों से भी जो कोई महाराज का दर्शन करना चाहता हो उसे बेरोक टोक सुविधापूर्वक और सुरक्षित रूप से चलने देना चाहिए। पाकशाला के अध्यक्ष और रसोइये भोजन बनाने के सब सामान, भांति भांति के भक्ष्य भोज्य पदार्थों को छकड़ों पर लाद कर प्रस्थान करना चाहिए। नगर में घोषणा करवा दी जाए, जो वन में जाकर धृतराष्ट्र आदि के दर्शन करना चाहे वे कल सवेरे यात्रा के लिए तैयार हों, कल यात्रा की जाएगी। इसलिए चलने वालों को विलंब नहीं करना चाहिए। मार्ग में हम लोगों के ठहरने के लिए आज ही कई तरह के डेरे तैयार करने चाहिए, तंबू वगैरह सब यहां से रवाना हो जाने चाहिए। इस प्रकार आज्ञा दे दी। सवेरा होते होते भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर ने स्त्रियों बूढ़ों को आगे करके नगर से प्रस्थान किया। बाहर जाकर पूर्वासी मनुष्यों की प्रतीक्षा करते हुए वे 5 दिनों तक एक ही स्थान पर टिके रहे और फिर सबको साथ में लेकर वन में गए। वैशंपायन जी कहते हैं कि राजा युधिष्ठिर ने लोकपालों के समान पराक्रमी अर्जुन, भीमसेन आदि सभी वीरों द्वारा सुरक्षित सेना को कूच करने की आज्ञा दी। पाते ही सब लोग चल दिए। कुछ लोग सवारियों से जा रहे थे, कुछ लोग पैदल जा रहे थे, कोई महान वेगशाली घोड़ों पर, कोई अग्नि के समान प्रज्वलित दमकते हुए स्वर्णमय रथों पर, कोई गजराजों पर, कोई ऊंटों पर सवार होकर यात्रा कर रहे थे। नगर और प्रांत के रहने वाले मनुष्य भी धृतराष्ट्र का दर्शन करने के लिए नाना प्रकार की सवारियों से राजा युधिष्ठिर के पीछे पीछे चले। राजा की आज्ञा के अनुसार सेनापति कृपाचार्य भी सेना को साथ में लेकर आश्रम की ओर चल दिए। कुरुराज युधिष्ठिर अनेकों ब्राह्मणों से घिरे हुए यात्रा कर रहे थे। उस समय अनेकों सूत, मागध और बंदीजन उनकी स्तुति करते हुए चल रहे थे। उनके मस्तक पर श्वेत छत्र तना हुआ था युधिष्ठिर के, तथा रथियों की बहुत बड़ी सेना उनके साथ चल रही थी। भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन पर्वताकार गजराजों की सेना के साथ जा रहे थे और सेना की अगुवाई कर रहे थे। भीमसेन बड़े बलवान शूरवीर चलते समय चारों तरफ नजर रख रहे थे। उन गजराजों की पीठ पर अनेक प्रकार के यंत्र और आयुध सुसज्जित किए थे। माद्री कुमार नकुल और सहदेव घोड़ों पर थे। महातेजस्वी जितेंद्रिय अर्जुन सफेद घोड़ों से जुते हुए दिव्य रथ पर विराजमान थे और राजा युधिष्ठिर का अनुसरण कर रहे थे। द्रौपदी आदि स्त्रियां भी शिविकाओं में बैठकर गरीबों को असंख्य धन बांटती हुई जा रही थी। रनिवास के अध्यक्ष सब ओर से स्त्रियों की रक्षा कर रहे थे। पांडवों की उस सेना में रथ, हाथी, घोड़ों की अधिकता थी। उनमें कोई बेणू बजा रहा है, कोई वीणा बजा रहा है, कोई तरह तरह की तुमुल ध्वनि से नए नए वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। कुरुवंशी वीर नदियों के रमणीय तटों और अनेकों सरोवर पर पड़ाव डालते हुए क्रम से आगे बढ़ते गए। महातेजस्वी युयुत्सु और पुरोहित धौम्य मुनि युधिष्ठिर के आदेश से हस्तिनापुर में ही रहकर नगर की रक्षा कर रहे थे। उधर राजा युधिष्ठिर क्रम से चलते चलते परम पवित्र यमुना नदी को पार कर कुरुक्षेत्र में जा पहुंचे। वहां दूर से ही उन्होंने राजर्षि शतयूप तथा कुरुवंशी धृतराष्ट्र के आश्रम को देखा। इससे सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। समस्त पांडव अपनी सवारियों से उतरे और दूर से ही पैदल चलकर बड़ी विनय के साथ राजा के आश्रम पर आए। साथ आए हुए समस्त सैनिक, राज्य के निवासी मनुष्य तथा कुरुवंश के प्रधान स्त्रियों, प्रधान पुरुषों की स्त्रियां भी पैदल ही आश्रम तक गईं। धृतराष्ट्र के उस पवित्र आश्रम पर सब ओर हिरणों के झुंड दिखाई दे रहे थे और केले का सुंदर उद्यान वहां की शोभा बढ़ा रहा था। पांडव लोग ज्यों ही आश्रम में पहुंचे त्यों ही बहुत से व्रतधारी, तपस्वी कौतूहलवश उनको देखने के लिए इकट्ठे हो गए। राजा युधिष्ठिर ने आंखों में आंसू भरकर उन तपस्वियों से पूछा, हे मुनिवरों, हमारे ज्येष्ठ पिता इस समय कहां दर्शन देंगे? उन्होंने उत्तर दिया, वे स्नान करने, फूल लाने और कलश में जल भरने के लिए यमुना के तट पर गए हैं। ये सुनकर युधिष्ठिर महाराज बड़े चिंतित हो गए। फिर पूछा, क्या महाराज स्वयं अपने कंधों पर कलश को लेकर के जल लाएंगे? ऋषियों ने कहा, ये तो उनका प्रतिदिन का धर्म है। महाराज युधिष्ठिर यमुना तट की ओर चले और दूर जाने पर उन्हें धृतराष्ट्र आदि सब लोग आते हुए दिखाई दिए। समस्त पांडव पिता के दर्शन की इच्छा से बड़ी तेजी के साथ चलने लगे। कुंती भी उनके साथ थी। सहदेव तो बड़े वेग से दौड़कर कुंती के पास जा पहुंचे और माता के चरणों में पड़कर फूट फूट कर रोने लगे। अपने प्यारे पुत्र को देखकर कुंती के मुख पर भी अश्रुओं की धारा बह चली और उन्होंने सहदेव को दोनों हाथ से उठाकर छाती से लगा लिया। तदनंतर राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन और नकुल को देखकर बड़ी उतावली के साथ उनकी ओर चली। माता को आते देख पांडवों ने पृथ्वी पर माथा टेक कर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात अपने नेत्रों के आंसू पहुंचकर उन्होंने गांधारी सहित धृतराष्ट्र के चरणों में विधिवत पूजन किया और उनके सबके हाथ से जल के भरे हुए कलश इन लोगों ने अपने हाथ में ले लिए। उस समय रनिवास की स्त्रियां तथा नगर और प्रांत के रहने वाले अन्य लोग कलश लाते हुए धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती आदि का दर्शन किया, सब रो पड़े और राजा युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र के पास जाकर सब लोगों का नाम और गोत्र बताया। परिचय पाकर धृतराष्ट्र ने सबका सत्कार किया और सबसे घिरकर वे आनंद के आंसू बहाने लगे। उन्हें ऐसा आभास हो रहा था मानो मैं तो पहले के भांति हस्तिनापुर के राजमहल में ही बैठा हूं। तदनंतर द्रौपदी आदि बहुओं ने गांधारी और कुंती सहित धृतराष्ट्र के चरणों में बड़ी श्रद्धा से प्रणाम किया और धृतराष्ट्र ने सबको आशीर्वाद दिया। गांधारी ने और कुंती ने द्रौपदी को अपने छाती से लगा लिया। इसके बाद वे सबके साथ सिद्ध और चारणों से सेवित अपने आश्रम पर गए। उस समय उनका आश्रम तारों से भरे हुए आकाश के समान दर्शकों से भरा हुआ था। राजा धृतराष्ट्र जब युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों के साथ आश्रम में विराजमान हुए, उस समय वहां अनेकों देशों से आए हुए महान भाग्यशाली तपस्वी पांडवों को देखने के लिए आए। उन्होंने पहले कभी पांडवों को देखा नहीं था। आते ही पूछा, आप में महाराज युधिष्ठिर कौन है? हमने महाबली भीमसेन का नाम सुना है, वो कौन है? गांडीव धनवा अर्जुन कौन है? नकुल और सहदेव के दर्शन कराओ और यशस्विनी द्रौपदी देवी कौन है? हम लोगों ने आज तक इनके दर्शन नहीं किए, हम लोग इन सब का परिचय पूछना चाहते हैं। उनके इस प्रकार पूछने पर संजय ने समस्त पांडवों तथा द्रौपदी आदि कुरुकुल की स्त्रियों का परिचय देते हुए कहा, ये जो सोने के समान गोरे और ऊंचे कद वाले जिनकी नासिका की नुकुली और नेत्र बड़े बड़े और कुछ लाल हैं, जो सिंह के समान बैठे हुए हैं, ये कुरुराज युधिष्ठिर हैं। बड़े गौर से उन्होंने युधिष्ठिर को देखा। ये जो मतवाले गजराज के समान चलने वाले, तपाए हुए सोने के समान गौरवर्ण तथा मोटे और चौड़े कंधे वाले हैं, जिनकी भुजाएं मांसल और विशाल है, जिनकी आंखें बड़ी मोटी मोटी हैं, जिनका सांस भी दूर तक सुनाई देता है, सांस लेते हैं दूर तक सुनाई देता है, इनका नाम भीमसेन है। इनके पास जो एक बड़ा सुंदर धनुष दिखाई दे रहा है और जो थोड़े श्याम रंग के हैं, तरुण हैं, कंधे सिंह के समान हैं, चेहरे पर जिनके विजय की चमक चमकती है, नेत्र कमलदल के समान विशाल है, ये वीरवर अर्जुन हैं। अर्जुन को देखा, उनको ये याद आया, अर्जुन तो नरश्रेष्ठ नरावतार, सुना था इन अर्जुन के रथ को कृष्ण ने हाका, ये मनी मन की भावनाओं से अर्जुन को देखने लगे। फिर श्रींजय ने आगे बताया, ये कुंती के पास जो दो श्रेष्ठ पुरुष दिखाई देते हैं, ये एक ही साथ उत्पन्न हुए थे, ये नकुल और सहदेव हैं। बल रूप और शील में इन दोनों की समानता करने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं है। ये नील कमल के समान श्याम रंग वाली सुंदरी जो मूर्तिमती लक्ष्मी तथा देवताओं की देवी सी जान पड़ती है, वो यशस्विनी द्रौपदी है। द्रौपदी को देखकर एक बार ऋषियों की आंखें डबडबा गई। सब घटनाएं याद आईं, भरी सभा में इनका अपमान। द्रौपदी को देखते ही गदगद हो गए। इनके पास ये जो स्वर्ण से भी उत्तम कांति वाली देवी चंद्रमा की मूर्तिमती प्रभासी विराजमान हो रही है, ये अनुपम प्रभावशाली चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण की छोटी बहन सुभद्रा है। उधर जो विशुद्ध सोने के रंग वाली सुंदरी देवी बैठी हुई राज नागराज कन्या उलूपी है तथा जिनके शरीर का रंग नूतन मधु पुष्पों की शोभा को मात कर रहा है, वे राजकुमारी चित्रांगदा है। ये उलूपी और चित्रांगदा दोनों ही अर्जुन की पत्नियां हैं। ये जो इंदीवर के समान श्याम वर्ण वाली राज महिला विराजमान है, ये कृष्ण के साथ टक्कर लेने का हौसला रखने वाले राज सेनापति की बहन और भीमसेन की पत्नी है। साथ ही ये चंपा के समान गौर वर्ण वाली सुंदरी बैठी है, ये मगधराज जरासंध की कन्या एवं माद्री कुमार सहदेव की भारिया है। इनके पास जो नील कमल के समान श्याम वर्ण वाली महिला है, वो माद्री के ज्येष्ठ पुत्र नकुल की पत्नी है। और ये जो तपाए हुए कुंदन के समान गौर वर्ण वाली तरुणी गोद में बालक लिए बैठी है, यह राजा विराट की कन्या एवं अभिमन्यु की धर्म पत्नी उत्तरा है। इनके सिवा ये जितनी स्त्रियां सफेद चादर ओढ़े विधवा वेश में बैठी हुई है, जिनके सीमंत सिंदूर शून्य हो रहे हैं, ये सब दुर्योधन आदि सो भाइयों की पत्नियां हैं और इन बूढ़े महाराज की पुत्र वधुए हैं। इनके पति और इनके पुत्र रणभूमि में मारे जा चुके हैं। हे महर्षियों, आपके प्रश्न का उत्तर मैंने मुख्य मुख्य व्यक्तियों के साथ दिया है। इस प्रकार संजय के मुख से सबका परिचय पाकर वे तपस्वी वहां से रवाना हो गए। उन तपस्वियों के जिह्वा पर एक ही बात रही, हमने आज पांडवों के दर्शन किए, हमने आज द्रौपदी के दर्शन किए, हमने आज कुंती पुत्रों के दर्शन किए, धर्मपुत्र युधिष्ठिर, वायुपुत्र भीम, इंद्रपुत्र अर्जुन और अश्विनी कुमारों के पुत्र माद्रीनंदन, नकुल और सहदेव, पांचों के दर्शन किए। ऐसी बातें करते करते अपने आश्रमों में चले गए। पांडवों के सैनिकों ने वाहनों को खोलकर आश्रम के बाहर ही पड़ाव डाल दिया और स्त्री पुरुष वृद्ध बालक छावनी के रूप में वहां पर सुखपूर्वक रहने लगे। उस समय राजा धृतराष्ट्र पांडवों से मिलकर कुशल समाचार पूछने लगे। युधिष्ठिर ने पूछा, धृतराष्ट्र ने पूछा युधिष्ठिर, तुम नगर और प्रांत के समस्त प्रजाओं तथा भाइयों सहित कुशल से हो ना? तुम्हारे आश्रय में रहकर जीवन निर्वाह करने वाले मंत्री, नौकर, चाकर और गुरुजन निरोग है ना? क्या वे तुम्हारे राज्य में बेखटके रहते हैं ना? क्या तुम प्राचीन राजर्षियों से सेवित पुरानी रीति नीति का पालन करते हो ना? अन्याय से तो अपना खजाना नहीं भरते हो ना? शत्रु मित्र और उदासीन पुरुषों के साथ यथायोग्य बर्ताव करते हो ना? क्या तुम्हारे स्वभाव और बर्ताव से ब्राह्मण संतुष्ट रहते हैं ना? पूर्ववासी सेवक और स्वजनों की बात तो क्या, शत्रुओं को भी तुम अपने सद्व्यवहार से संतुष्ट रखते हो ना? क्या तुम श्रद्धापूर्वक पितरों और देवताओं की पूजा तथा अन्न और जल के द्वारा अतिथियों का सत्कार करते हो ना? क्या तुम्हारे राज्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा कुटुंबीजन न्याय मार्ग का अवलंबन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते हैं ना? स्त्री बालक और वृद्ध पुरुषों को दुख तो नहीं उठाना पड़ता है ना? तुम्हारे राज्य में कोई आजीविका के लिए भीख तो नहीं मांगते हैं ना? तुम्हारे घर में बहुओं का और बेटियों का आदर होता है ना? जिस घर में बहु बेटियों का आदर होता है वहां देवताओं का निवास होता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय सुनो, धृतराष्ट्र के इस प्रकार कुशल समाचार पूछने पर बातचीत करने में कुशल न्यायवेत्ता धर्मराज राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार कहा, हे राजन, मेरे यहां सब कुशल है। आपके तप, इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह आदि सद्गुणों की वृद्धि तो हो रही है ना? मेरी माता कुंती को आपकी सेवा शुश्रूषा करने में कुछ क्लेश तो नहीं होता है ना? क्या इनका वनवास सार्थक हो रहा है ना? मेरी बड़ी माता गांधारी देवी जो घोर तपस्या में संलग्न हो रही है, युद्ध में मारे गए अपने महापराक्रमी पुत्रों के लिए कभी शोक तो नहीं करती है ना? पिताजी, ये संजय तो कुशल पूर्वक तपस्या कर रहे हैं ना? इस समय विदुर जी कहाँ हैं? सब तो दिखाई दे रहे हैं, वो अब तक दिखाई नहीं दिए, कहाँ है? युधिष्ठिर ने जब इस प्रकार प्रश्न किया तो धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, विदुर जी कुशल पूर्वक हैं, वे बड़ी कठोर तपस्या में लगे हैं, निरंतर उपवास करने और वायु पीकर रहने के कारण उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया है। उनके शरीर की नस नस दिखाई देती है। इस निर्जन वन में कभी कभी किन्हीं किन्हीं ब्राह्मणों को बड़ी मुश्किल से उनके दर्शन होते हैं। राजा धृतराष्ट्र इस प्रकार कह ही रहे थे कि मुख में पत्थर का टुकड़ा लिए जटाधारी विदुर जी दूर से आते हुए दिखाई पड़े। उनका नंग धड़ंग शरीर अत्यंत दुर्बल और वन की धूल मिट्टियों से भरा हुआ दिखाई देता था। वे आश्रम की ओर देखकर सहसा लौट पड़े। यह देख राजा युधिष्ठिर बड़े आश्चर्य में डूब गए और अकेले ही उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। विदुर जी कभी दिखाई देते हैं, कभी अदृश्य हो जाते हैं। युधिष्ठिर जी बहुत ही व्यथित हो गए। इस प्रकार वे घोर जंगल की ओर बढ़ते गए और युधिष्ठिर जी यह कहते हुए दौड़ रहे थे कि विदुर जी, मैं आपका परम प्रिय युधिष्ठिर हूं, आपके दर्शन के लिए मैं आया हूं, आप हमको देखकर क्यों भागते हो? कोई अपराध हो गया हो तो मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं, कृपया मुझे दर्शन दीजिए। इस प्रकार घोर निर्जन एकांत जंगल में पहुंचने पर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ परम नीतिज्ञ विदुर जी एक पेड़ के सहारे खड़े हो गए। वे इतने दुर्बल हो चुके थे कि उनके शरीर का ढांचा मात्र रह गया। फिर भी परम बुद्धिमान युधिष्ठिर ने उन्हें पहचान लिया और मैं युधिष्ठिर हूं ऐसा कहते हुए उनके सामने जाकर खड़े हो गए और विदुर जी ने भी उनको आशीर्वाद दिया। तदनंतर महात्मा विदुर जी एकाग्रचित्त होकर राजा युधिष्ठिर को एक टक देखने लगे। वे अपनी दृष्टि को उनकी दृष्टि में, शरीर को शरीर में, प्राणों को प्राणों में और इंद्रियों को इंद्रियों में मिलाकर उनके साथ एकमेक हो गए। इस प्रकार अपने तेज से प्रज्वलित होते हुए विदुर जी ने धर्मराज के शरीर में प्रवेश किया। राजा युधिष्ठिर ने देखा विदुर जी की आंखें तो पहले की तरह स्थिर है, उनका शरीर भी पहले के भांति वृक्ष के सहारे खड़ा है, किंतु आंखों में बिल्कुल पलक नहीं है, नासिका से श्वास की गति सुनाई दिखाई भी नहीं देती है, उनकी नाड़ियां भी स्पंदित नहीं होती हैं। क्या ये क्या हुआ? चेतना ही नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने अपने में बड़ा विशेष बल देखा, अधिक गुणों का अनुभव किया। उनके मन में आया विदुर जी चले गए, विदुर जी का दाह संस्कार करने की इच्छा हुई। इतने में ही आकाशवाणी हुई, सुनो धर्मराज युधिष्ठिर, विदुर जी संन्यास धर्म का पालन करते थे, अतएव इनके शरीर का दाह मत करो, ये सनातन धर्म है। उन्हें सांतानिक नामक लोगों की प्राप्ति होगी, अतः उनके लिए शोक मत करो। यह सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर वहां से लौट गए और राजा धृतराष्ट्र के पास जाकर उनको ये सारी बातें बताई। विदुर जी के देह त्याग का अद्भुत समाचार सुनकर तेजस्वी धृतराष्ट्र तथा भीमसेन आदि सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके बाद धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा, बेटा मेरे दिए हुए फल मूल और जल को ग्रहण करो। मनुष्य के पास अपने उपभोग में आने वाली जो वस्तु हो उसी से ही उसको अतिथि का सत्कार करना चाहिए। उनके इस प्रकार कहने पर युधिष्ठिर ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा ली और उसके बाद फल मूल आदि का भाइयों सहित भोजन किया और तत्पश्चात सब लोगों ने वृक्षों के नीचे वह रात बिताई। बहुत अच्छी कथाएं आएंगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर रात बीत जाने के बाद राजा युधिष्ठिर पूर्वान्नकालीन नैतिक कर्मों से निवृत्त होकर धृतराष्ट्र की आज्ञा से मुनियों के आश्रम देखने चले गए। उनके साथ भीमसेन आदि चारों भाई थे। उन्होंने सुखपूर्वक भिन्न भिन्न स्थानों पर घूमकर देखा, वेदियों पर अग्नि प्रज्वलित होती हुई देखी, नदी आदि पर स्नान करते हुए देखा ऋषि मुनियों को, आहुति देते हुए देखा, किन्हीं को स्वाध्याय करते हुए देखा, किन्हीं को वेद के मंत्रों का उच्चारण करते हुए देखा। उस समय राजा युधिष्ठिर ने तपस्वियों के लिए लाए हुए सोने और तांबे की कलश, मृगचर्म, कंबल, श्रक, श्रुवा, कमंडलू, बटलोई, थाली आदि लोहे के बने हुए भांति भांति बर्तन आश्रमों में पहुंचाए। जिसने जितने और जो जो बर्तन मांगे उनको उतने और वे ही बर्तन दिए गए। इस प्रकार धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर आश्रमों में घूम घूम कर धन बांटने के पश्चात धृतराष्ट्र के आश्रम पर लौट आए। वहां उन्होंने देखा कि राजा धृतराष्ट्र नित्य कर्म करके गांधारी के साथ शांत भाव से बैठे हैं और उनसे थोड़ी दूर पर शिष्टाचार का पालन करने वाली माता कुंती शिष्या के भांति विनीत भाव से खड़ी है। युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को प्रणाम किया, उनको बैठने की आज्ञा मिली, कुशासन पर बैठ गए। भीमसेन आदि भी उनको प्रणाम करके वहीं बैठ गए। इन सब के बैठ जाने के बाद कुरुक्षेत्र निवासी शतयुपादि महर्षियों और महातेजस्वी भगवान वेदव्यास ने दर्शन दिया। व्यास जी के साथ अनेकों देवर्षि और शिष्य वृंद भी थे। राजा धृतराष्ट्र तथा कुंती नंदन युधिष्ठिर और भीमसेन आदि ने उठकर सबको प्रणाम किया। व्यास जी ने धृतराष्ट्र को बैठने की आज्ञा दी और स्वयं एक सुंदर कुशासन पर जो काले मृग से आच्छादित तथा उन्हीं के लिए बिछाया गया था विराजमान हो गए। फिर व्यास जी की आज्ञा से सभी ऋषि मुनि चारों ओर कुश की चटाइयों पर बैठ गए। तदनंतर सत्यवती नंदन व्यास जी ने धृतराष्ट्र से पूछा, राजन तुम्हारी तपस्या कैसी चल रही है? ठीक चल रही है ना? वनवास में तुम्हारा मन तो लगता है ना? अब कभी तुम्हारे मन में अपने पुत्रों के मारे जाने का शोक तो नहीं होता है ना? तुम्हारी समस्त ज्ञानेन्द्रियां निर्मल हो गई ना? क्या तुम अपने बुद्धि को दृढ़ करके वनवास के कठोर नियमों का पालन करते हो ना? मेरी बहू गांधारी बड़ी बुद्धिमती है, ये धर्म और अर्थ को समझने वाली और जन्म मरण के तत्व को जानने वाली है, इसे तो कभी शोक नहीं होता है ना? तथा ये कुंती जिसने अपने पुत्रों की ममता छोड़कर गुरुजनों की सेवा में मन लगाया है, अभिमान रहित होकर तुम्हारी शुश्रूषा करती है ना? क्या तुमने युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को धीरज बंधाया है ना? क्या इन्हें देखकर तुम्हें प्रसन्नता होती है ना? इनकी ओर से तुम्हारा मन साफ है ना? तुम्हारे हृदय के भाव शुद्ध हो गए हैं ना? महाराज किसी से भी बैर मत रखना, ये मृत्यु अवस्था है। किसी के प्रति दुर्भाव मत रखना, ये मृत्यु अवस्था है। सत्य भाषण करना, हृदय से क्रोध को सर्वथा निकाल देना, ये तीन बातें प्राणियों के लिए बड़ी श्रेष्ठ हैं। महात्मा विदुर के परलोक गमन का समाचार तो तुम्हें मालूम हो ही गया है ना? साक्षात धर्म ही मांडव्य ऋषि के साप से विदुर के रूप में अवतार लिए थे। वे परम बुद्धिमान थे, महान योगी थे, महात्मा और महामनस्वी थे। देवताओं में बृहस्पति और असुरों में शुक्राचार्य जैसे बुद्धिमान थे, वो भी ऐसे बुद्धिमान नहीं थे जैसे कुरुश्रेष्ठ विदुर जी बुद्धिमान थे। तुम्हारे भाई विदुर देवताओं के भी देवता और सनातन धर्म के साक्षात स्वरूप थे, जो सत्य, इंद्रिय संयम, मनोनिग्रह, अहिंसा और दान आदि के रूप में विश्व का कल्याण करता है। वह तेजस्वी सनातन धर्म विदुर से भिन्न नहीं था, जिसने योग बल से कुरुराज युधिष्ठिर को जन्म दिया। वह धर्म नामक देवता भी विदुर का ही स्वरूप है। जैसे अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश की सत्ता इस लोक और परलोक में है, उसी प्रकार धर्म भी उभय लोक में व्याप्त है। धर्म की सर्वत्र गति है तथा वह संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त करके स्थित है। जिसके समस्त पाप धुल गए वे सिद्ध पुरुष तथा देवताओं के भी देवता धर्म का साक्षात्कार करते हैं। जिन्हें धर्म कहते हैं वो विदुर और जो विदुर जी थे वे ही पांडु नंदन युधिष्ठिर हैं, जो इस समय तुम्हारे सामने दास के भांति खड़े हैं। महान योग बल से संपन्न और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ तुम्हारे भाई विदुर कुंती नंदन युधिष्ठिर को सामने देखकर इन्हीं के शरीर में समाविष्ट हो गए। संभवतः युधिष्ठिर को भी इसका ज्ञान नहीं हुआ होगा। अब तुम्हें भी शीघ्र ही कल्याण का भागी बनाऊंगा बेटा धृतराष्ट्र। इस समय में तुम्हारे बचे खुचे कोई संशय हो उनका निवारण करने के लिए आया हूं। पूर्व काल के किसी भी महर्षि ने अब तक जो चमत्कार पूर्ण कार्य नहीं किया वो आज मैं तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष करके दिखाऊंगा। आज मैं तुम्हें अपनी तपस्या का आश्चर्यजनक प्रभाव दिखाता हूं। मतलब तुम मुझसे किस अभीष्ट वस्तु की इच्छा रखते हो? यदि किसी को देखने की, किसी को सुनने की, किसी से स्पर्श करने की तुम्हारी इच्छा हो तो बताओ, मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा। जन्मेजय ने कहा, जन्मेजय ने पूछा, हे वेशम पायन, धृतराष्ट्र के आश्रम पर पांडवों की रहते परम तेजस्वी महर्षि व्यासी ने जो आश्चर्यजनक घटना दिखाने की प्रतिज्ञा की थी वो किस प्रकार हुई? मेरा मन इसको सुनने के लिए बड़ा उत्सुक है। राजा युधिष्ठिर ने पूर्वासियों सहित उस आश्रम में कितने दिन तक निवास किया तथा वे अपने सैनिकों और अंतपुर की स्त्रियों के साथ क्या क्या आहार करते थे? वैशंपायन जी ने कहा, हे जनमेजय, पांडव धृतराष्ट्र की आज्ञा से भांति भांति के भोजन करते हुए बड़े सुख से उनके आश्रम पर रहने लगे। उन्होंने एक मास तक उस तपोवन में निवास किया। हां, मैं जो तुम्हें कह रहा था, महर्षि व्यास जी राजा धृतराष्ट्र से जब उपयुक्त बातें कह रहे थे कि तुम्हारी क्या इच्छा है देखने की, सुनने की या स्पर्श करने की, आज तक मैंने जो प्रभाव नहीं दिखाया वो चमत्कार पूर्ण कार्य तुमको दिखाऊंगा, तो ये बात सुनकर के उसी समय वहां चारों ओर सारे ऋषि मुनि इकट्ठे हो गए। व्यास जी ने कहा तो धृतराष्ट्र से था, परंतु उसी समय नारद, देवल, पर्वत, विश्वावसु, तुम्बुरु और चित्रसेन आदि सब वहां उपस्थित हो गए। गुरुराज युधिष्ठिर ने बड़ा आश्चर्य किया। इधर तो व्यास जी का कहना और तत्काल इतने ऋषि मुनियों का उपस्थित होना, बड़े आदर के साथ सबका स्वागत किया। सब लोग आसन पर विराजमान हो गए। फिर पांडवों सहित राजा धृतराष्ट्र भी बैठ गए। गांधारी, कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा तथा दूसरी स्त्रियां भी अपने अपने आसनों पर बैठी हुई थी। उस समय वहां उन लोगों में प्राचीन ऋषियों, देवताओं और असुरों से संबंध रखने वाली धर्म विषय की चर्चा हुई। बातचीत के अंत में वेद वेत्ताओं और वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी महर्षि व्यास जी ने प्रसन्न होकर राजा धृतराष्ट्र से कहा, हे धृतराष्ट्र, तुम और गांधारी अपने मरे हुए पुत्रों की शोकाग्नि से निरंतर जल रहे थे ना? वो जलन अभी है या नहीं है? मुझे लगता है तुम्हारे हृदय में कहीं कहीं उन सोपुत्रों के मरने की कशक जरूर तुमको शोक करती है। इस कारण तुम दोनों के हृदय में सर्वदा दुख बना रहता है, उसे मैं जानता हूं। कुंती और द्रौपदी के हृदय में भी वही दुख है तथा कृष्ण की बहन सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु के मारे जाने का जो तीव्र दुख सहन कर रही है वो भी मुझसे छिपा नहीं है। वास्तव में तुम सब लोगों का समागम सुनकर मैं तुम्हारे मानसिक संदेहों का निवारण करने के लिए आया हूं। ये देवता, ये गंधर्व और ये महर्षि आज मेरी चिर संपत्ति, चिर संचित तपस्या का विलक्षण प्रभाव देखने के लिए आए हैं। महाराज बोलो, मैं तुम्हारी कौन सी कामना पूर्ण करूं? आज मैं तुम्हें वनोवांछित वर देने के लिए तैयार हूं, तुम मेरी तपस्या का फल देखो तो सही। धृतराष्ट्र ने कहा, भगवन, आज मुझे आप जैसे संत पुरुषों का समागम प्राप्त हुआ, ये केवल आपकी मेरे पर कृपा है। मैं अपने आप को इससे धन्य मानता हूं। आज मेरा जीवन सफल हो गया, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि मैं आप लोगों के दर्शन मात्र से पवित्र हो गया। किंतु अब यहां से कथा मुड़ती है, किंतु मेरे मन में एक संशय है। आपने ठीक बताया है, वो मुझे बार बार कसक रहा है। महाभारत युद्ध में मेरे पुत्र और पौत्र मारे गए, उनकी क्या गति हुई होगी? उनकी याद करके मेरा चित्त सदा संतप्त रहता है। मेरे पापी पुत्र ने पृथ्वी का राज्य पाने के लोभ से शांतनु नंदन भीष्म और बूढ़े ब्राह्मण द्रोणाचार्य के साथ ही बहुत बड़ी सेना को मरवाकर समस्त कुल का संहार कर डाला। इन सब बातों का निरंतर स्मरण करके मैं रात दिन अनुताप की आग में जलता रहता हूं। दुख और शोक के आघात से एक क्षण के लिए भी मुझे शांति नहीं मिलती है। मैं किसको कहूं, क्या कहूं? मैं सब जान रहा हूं। आप सभी महात्माओं ने मुझे बार बार सचेष्ट किया था, खूब समझाया था, परंतु फिर भी मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया। आज आपने जब ये कहा है तो मैंने अपनी बात आपके सामने रखी है। राजर्षि धृतराष्ट्र इस प्रकार कहते कहते फूट फूट कर सबके सामने रोने लग गए। भांति भांति का विलाप सुनकर गांधारी नए शोक में डूब गई। इन सबको शोकावस्था में देखकर पांडु लोग बिलख पड़े। धृतराष्ट्र और गांधारी पुत्र शोक से बड़े व्याकुल हो रहे थे। और अपने ससुर तुल्य व्यास जी के सामने हाथ जोड़ करके गांधारी ने निवेदन किया, मुनिवर इन महाराज को अपने मरे हुए पुत्रों के लिए शोक करते हुए आज 16 बरस बीत गए, किंतु अब तक इन्हें शांति नहीं मिली। पुत्र शोक से संतप्त होकर ये सदा आह भरते रहते हैं, रात भर इनको नींद नहीं आती। अतः एक बार आप इन्हें इनके पुत्रों से मिला दीजिए, इससे इनका दुख शांत हो जाए। आप अपने तपोबल से संपूर्ण लोकों की नई सृष्टि कर सकते हैं, फिर राजा को इनके परलोकवासी पुत्रों से मिला देना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। द्रुपद कुमारी द्रौपदी, मुझे अपनी समस्त पुत्र वधुओं में सबसे बढ़कर प्रिय है। इस बेचारी के भाई बंधु पुत्र सभी मारे गए, इससे यह भी अत्यंत शोक मग्न रहा करती है। सदा कल्याणमय वचन बोलने वाली कृष्ण की बहन सुभद्रा भी अभिमन्यु के वध से कम संतप्त नहीं है, ये भी रात दिन शोक में डूबी रहती है। और यह है भूरिश्रवा की धर्मपत्नी, इन्हें भी अपने स्वामी के मारे जाने का बड़ा दुख है। इन महाराज के जो 100 पुत्र रणांगण में मारे गए, उनकी ये 100 स्त्रियां हैं, ये मेरी विधवा बहुएं हैं, दुख और शोक के आघात को कैसे सहन करती हैं, इसको यही जान पाती हैं। मेरे और महाराज के भी यही शोक रात दिन उत्पीड़ित करता है। मेरे महात्मा ससुर भीष्म जी तथा महारथी सोमदत्त आदि किस गति को प्राप्त हुए होंगे, ये महान संदेह दूर नहीं हो रहा है। सुनते तो बहुत हैं कि युद्ध में मरने पर देवलोक मिलता है, परंतु उनके पापों को याद करते हैं तब इन बातों पर कुछ संदेह भी होता है। क्या करें, अब हम ज्यादा कुछ जानते नहीं हैं। आप ऐसी कृपा करें जिससे इन महाराज का, मेरा और आपकी वधु कुंती का, द्रौपदी का, सुभद्रा का, सभी का शोक दूर हो जाए। गांधारी जब इस प्रकार कह रही थी, उसी समय कुंती ने आंख बंद करके गुप्त रूप से उत्पन्न हुए सूर्य के समान तेजस्वी अपने पुत्र कर्ण का स्मरण किया, क्योंकि अभी तक कर्ण का नाम नहीं आया। उसने कर्ण का स्मरण किया। भगवान व्यास जी ने कुंती के आंखों से टपकने वाले आंसुओं को देखकर कहा, बेटी तुम्हें भी यदि कुछ कहना हो तो कहो, तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ। यह सुनकर कुंती देवी ने मस्तक झुकाकर अपने ससुर के चरणों में प्रणाम किया और कुछ लज्जित सी होकर प्राचीन रहस्य को प्रकट करते हुए कहा, हे भगवान, आप मेरे ससुर हैं। ससुर तो देवताओं का भी देवता माना गया है, पिता से भी बढ़कर माना गया है, अतः मेरे लिए आप देवताओं से बढ़कर हैं। मैं आपके सामने अपने जीवन का गुप्त रहस्य प्रकट करती हूं, सच्ची बात बता रही हूं, आप सुनने की कृपा करें। एक समय की बात है, परम क्रोधी महर्षि दुर्वासा मेरे पिता के यहां भिक्षा के लिए आए थे। मैंने उन्हें अपनी की हुई सेवाओं के द्वारा संतुष्ट कर लिया। मेरा बर्ताव पवित्र और शुद्ध हृदय था, मेरे द्वारा उनका कोई अपराध नहीं हुआ। क्रोध करने के अवसर भी आए, किंतु एक बार भी मैंने उन पर क्रोध नहीं किया। इससे संतुष्ट होकर वे महामुनि मुझे वरदान देने लगे। उन्होंने कहा मेरा दिया हुआ वरदान तुम्हें अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा पुत्री, मैं तुम्हें वरदान देकर ही जाऊंगा। उनकी बात सुनकर मैं शाप के डर से बोली, अच्छा महाराज, आपकी जो आज्ञा हो मुझे स्वीकार है, जो भी वरदान देंगे वो मैं नतमस्तक होकर आदर के साथ स्वीकार करूंगी। तब वे पुनः बोले, भद्रे, तुम जिन जिन देवताओं का आह्वान करोगी वे सभी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। यूं कहकर के दुर्वासा वहां से अंतरित हो गए। मैं सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़ गई। किसी भी अवस्था में उनकी बात मुझे भूलती नहीं थी। एक दिन मैं अपने महल की छत पर खड़ी थी, उसी समय सूर्य देव का उदय हुआ। महर्षि दुर्वासा, जिनके वचनों का स्मरण मैंने किया था, मैं चाह भरी दृष्टि से सूर्य की ओर देखने लगी। बस इतने में ही भगवान सूर्य मेरे सामने आकर खड़े हो गए। वो दो शरीर धारण करके एक से संपूर्ण विश्व को प्रकाशित कर रहे थे और दूसरे से वो मेरे पास आए। उन्हें देखकर मैं कांप उठी। उन्होंने आते ही कहा, देवी, मुझसे कोई वरदान मांगो। किंतु मैंने उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस कृपा करके आप यहां से चले जाइए। वे बोले, देवी, मेरा आह्वान व्यर्थ नहीं हो सकता, तुम कोई न कोई वर अवश्य मांग लो, अन्यथा मैं तुम्हारे और तुम्हारे वरदाता ब्राह्मण को भस्म कर डालूंगा। तब मैंने कहा, भगवान, मुझे आपके समान पुत्र पैदा हो। इतना कहते ही सूर्यदेव मुझे मोहित करके अपने तेज के द्वारा मेरे शरीर में प्रविष्ट हो गए। तत्पश्चात बोले, देवी, तुम्हारे एक पुत्र उत्पन्न होगा। बस यूं कहकर वे आकाश में चले गए। तब से मैं इस वृत्तांत को पिताजी से भी गुप्त रखने के लिए महल के भीतर ही भीतर रहने लगी। और जब गुप्त रूप से पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसे मैंने पानी में बहा दिया। वही मेरा कर्ण था। उसके जन्म के बाद मैं पुनः भगवान सूर्य की कृपा से कन्या भाव को प्राप्त हो गई और मेरा वह कार्य जैसा भी था वो उन्होंने समाप्त कर दिया। अब आप विचार कीजिए, मेरा पाप है या अपाप मैंने आपके सामने प्रकट कर दिया है। यदि पाप हो तो आप उसे दूर कर सकते हो। इस समय मैं अपने उसी पुत्र कर्ण को देखना चाहती हूं। राजा धृतराष्ट्र के हृदय की बात भी आपको ज्ञात हो चुकी है, अतः इनकी इच्छा भी पूर्ण होनी चाहिए। कुंती के इस प्रकार कहने पर वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि व्यास जी ने कहा, बेटी, तुमने जो कुछ कहा है वो सब सत्य है, इसमें तुम्हारा कोई पाप नहीं है। तुम मनुष्य शरीर में हो और वो देव शरीर में है। ये सूर्य के द्वारा तुम्हारा जो कर्ण का उत्पन्न होना है ये किसी प्रकार अपराध या पाप की कोटि में नहीं आता। तुम्हारा कोई अपराध नहीं, क्योंकि उस समय तुम कुमारी बालिका थी। देवता लोग अणिमा आदि ऐश्वर्यों से संपन्न होते हैं, अतः वे किसी भी शरीर में प्रविष्ट हो सकते हैं। वे अपने संकल्प, वचन, दृष्टि, स्पर्श या हर्षोत्पादन मात्र से भी पुत्र पैदा कर सकते हैं। देव धर्म के द्वारा मनुष्य धर्म कभी दूषित नहीं होता, ऐसा जानकर हे कुंती तुम अपना मानसिक भय दूर कर दो। अब महर्षि व्यास ने गांधारी से कहा, बेटी गांधारी, आज रात में तुम अपने पुत्रों और भाइयों का दर्शन करोगी। कुंती कर्ण का दर्शन करेगी, सुभद्रा अभिमन्यु को देखेगी, द्रौपदी अपने पिता और पुत्र को देखेगी और भाइयों को देखेगी। तुम सब लोगों का उन महात्मा क्षत्रियों के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहकर मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। अब तुम सब लोगों को उन महात्मा क्षत्रियों के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहकर ही मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। ये देवताओं का कार्य था और इसी रूप में होने वाला था, इसलिए संपूर्ण देवता अपने अपने अंश से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए थे। गंधर्वों के राजा ये धृतराष्ट्र, ये मनुष्य लोक में अवतीर्ण होकर गांधारी तुम्हारे पति बने। राजा पांडु देवताओं में श्रेष्ठ भगवान विष्णु के अंश से अवतीर्ण हुए थे। विदुर और युधिष्ठिर धर्म के अवतार, दुर्योधन कलियुग का अवतार, शकुनी द्वापर का अवतार, दुशासन आदि सभी राक्षस अवतार, अर्जुन को पुरातन ऋषि नर और भगवान श्री कृष्ण को तुम नारायण समझो, नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों के अवतार, युद्ध में जिसे छह महारथियों ने मिलकर मारा वो सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, साक्षात चंद्रमा का अंश और कर्ण के रूप में स्वयं सूर्यदेव ही तो आए थे। द्रौपदी के साथ उत्पन्न हुआ धृष्टद्युम्न अग्नि का अंश और शिखंडी राक्षस था। द्रोणाचार्य बृहस्पति के अंश थे और अश्वत्थामा भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ था। गंगानंदन भीष्म मनुष्य भाव को प्राप्त हुए एक वसु थे। इस प्रकार ये सब देवता कार्यवश मनुष्य योनि में आए थे और वे अपने अवतार का उद्देश्य पूरा करके पुनः स्वर्ग में चले गए। तुम सब लोगों के हृदय में पारलौकिक भय के कारण जो चिरकाल से दुख भरा हुआ है उसे मैं आज अभी दूर कर देता हूं। इस समय आप सब लोग गंगा जी के तट पर चलो, वहां आपको अपने मरे हुए पुत्रों का मैं दर्शन कराऊंगा। वेशमपायन जी कहते हैं, राजन महर्षि व्यास के वचन सुनकर सब लोग बड़े आनंदित हुए। कुंती को ऐसा लगा मानो मेरे हृदय में खटकता हुआ कोई त्रिशूल था वो बाहर निकल गया। सब सिंह के समान गर्जना करते हुए प्रसन्नता पूर्वक गंगा के तट पर पहुंचे। राजा धृतराष्ट्र, अपने मंत्री, पांडव, मुनिगण और गंधर्व समुदाय के साथ गंगा जी के समीप पहुंचे। धीरे धीरे सारा जन समुदाय गंगा के तट पर पहुंचा और सब लोग अपनी अपनी रुचि तथा सुविधा के अनुसार जहां तहां ठहर गए। मृत राजाओं को देखने की इच्छा से सब हस्तिनापुर के लोग रातों रातों प्रतीक्षा करने लगे। वह दिन उन्हें 100 वर्षों के समान लंबा जान पड़ रहा था। तदनंतर जब सूर्य नारायण अस्ताचल की ओर चले गए, रात होने लगी, सब लोगों ने सायंकाल का नैतिक कर्म किया और भगवान व्यास के पास उनके दर्शन करके आगे के कार्यक्रम की उत्सुकता के साथ उनके पास बैठ गए। धर्मात्मा राजा धृतराष्ट्र पवित्र और एकाग्र चित्त होकर पांडवों और ऋषियों के साथ व्यास के निकट पहुंच गए। कुरुकुल की स्त्रियां गांधारी के साथ बैठ गईं, नगर तथा प्रांत के निवासी भी अवस्थानुसार यथास्थान विराजमान हो गए। तदनंतर मुनिवर व्यास जी ने गांधारी के भागीरथी के पवित्र जल में स्पर्श किया, पवित्र जल में प्रवेश किया और पांडव कौरव पक्ष के समस्त योद्धाओं तथा भिन्न भिन्न देश के राजाओं का आह्वान किया, आओ धृतराष्ट्र के पुत्रों आओ। सबका नाम लिया, कर्ण अभिमन्यु सब आओ। उस समय पानी के भीतर एक अलौकिक ध्वनि सुनाई पड़ी, जैसे कुरुक्षेत्र में कौरव पांडव सेना एकत्रित होने पर जैसी तड़पड़ाहट आवाजें आती थी, ऐसी आवाजें आईं। थोड़ी देर में भीष्म और द्रोणाचार्य आदि हजारों वीर अपने सैनिकों सहित जल से बाहर निकल आए। पुत्रों और सेनाओं सहित राजा विराट, द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र सुभद्रानंदन अभिमन्यु, राक्षस घटोत्कच, कर्ण, दुर्योधन, शकुनी और दुशासन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र, जरासंध कुमार सहदेव, भगदत्त, जलसंध, भूरिश्रवा, शल, शल्य, भ्राताओं सहित वृषसेन, राजकुमार लक्ष्मण, धृष्टद्युम्न और शिखंडी के पुत्र अपने छोटे भाई सहित धृष्टकेतु, अचल, वृषक, राक्षस अलायुध, वाल्लिक, सोमदत्त, चेकितान तथा और भी बहुत से वीर जो संख्या में अधिक होने के कारण नाम लेकर नहीं गिनाए गए, देदीप्यमान शरीर धारण करके जल से एक साथ प्रकट हुए। जिस वीर का जैसा वेश, जिस तरह की ध्वजा, जैसा वाहन, वह उसी से युक्त दिखाई पड़ा। सब ने दिव्य वस्त्र धारण कर रखे थे, सभी के कानों में दिव्य कुंडल जगमगा रहे थे। उस समय वे वेर, अहंकार, क्रोध, मात्सर्य, शत्रुता, द्वेष आदि को बिल्कुल छोड़ चुके थे। गंधर्व उनका यशोगान कर रहे थे, बंदीजन उनकी स्तुति कर रहे थे। सत्यवंदन सत्यवती नंदन महर्षि व्यास जी ने प्रसन्न होकर अपने तपस्या के प्रभाव से राजा धृतराष्ट्र को दिव्य नेत्र प्रदान किए। यशस्विनी गांधारी भी दिव्य ज्ञान से संपन्न हो गई। उन दोनों ने युद्ध में मरे हुए पुत्रों तथा अन्य संबंधियों को अब आंख खोल करके देखा। वह बड़ा ही अद्भुत, अचिंत्य और अत्यंत रोमांचकारी दृश्य था। सबकी आंखें स्थिर हो गईं। प्रजावर्ग के सब लोग आश्चर्यमग्न होकर एकटक दृष्टि से इस घटना को देखने लगे। राजा धृतराष्ट्र व्यास की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर अपने सब पुत्रों को देखते देखते आनंद मग्न हो गए और उनके प्रेम से आंसू टपकने लगे। तत्पश्चात क्रोध और मात्सर्य से रहित एवं पाप शून्य हुए वे सभी नरश्रेष्ठ वीर ब्रह्मर्षियों की बनाई हुई उत्तम प्रणाली के अनुसार एक दूसरे से बड़े प्रेम से मिले। उस समय सबके मन में उल्लास था। पुत्र पिता माता के पास जाकर प्रणाम करता है, पति स्त्री से मिलता है, भाई भाई से मिलता है, मित्र मित्र के साथ मिलता है। पांडवों ने सुभद्रानंदन अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्रों को बड़े हर्ष से अपने छाती से लगाया। फिर उन्होंने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक कर्ण के साथ मिलकर उनको प्रणाम किया और बैठकर बड़े प्रसन्न होकर बातें कर रहे थे। कौन कह सकता है कि इनका कभी युद्ध भी हुआ था? क्या अच्छा प्रसंग है देखो, कौन कह सकता है इनका कभी कोई युद्ध भी हुआ था? इतना स्नेह, इतना प्रेम, ऐसा सौहार्द, सबको आश्चर्य में डालने वाला था। इसी प्रकार वे सब गुरुजनों, बांधवों और पुत्रों के साथ मिले, सारी रात एक दूसरे से घूमने फिरने मिलने में सबको बड़ा आनंद का अनुभव हो रहा था। किसी को ये नहीं सूझा कि रात है, सब तो आनंद ही आनंद में थे। कहां गया वो हृदय का शोक, भय, त्रास, उद्वेग, अपयश, द्वेष, कटुता, सब समाप्त। वहां आई हुई स्त्रियां अपने पिता, भाई और पुत्रों से मिलकर बड़ी प्रसन्न हुई। जिनके पति स्त्रियों को मिले, उन स्त्रियों के आनंद का कोई ठिकाना नहीं। वे वीर और उनकी तरुणी स्त्रियां एक साथ सब बैठे हुए एक दूसरे का बहुत कुशल क्षेम पूछने लगे। सबसे प्रेम भरी बातें हुई और सभी ने कहा, अब आप हमको अनुमति दीजिए, हम यहां से चलने के लिए तैयार हैं। उसी प्रकार जैसे वे मिले, आहा, धृतराष्ट्र के सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन जिस समय युधिष्ठिर जी को प्रणाम करने के लिए झुकते हैं, युधिष्ठिर जी उनको प्रेम से छाती से लगाते हैं और भीमसेन दुर्योधन को अपने छाती से लगाता है। बहुत प्रेम से मिले और सब आपस में मिलकर के, गले मिलकर के जैसे आए वैसे ही चलने के लिए तैयार हो गए। तब मुनिवर व्यास जी ने उन सब का विसर्जन कर दिया और एक क्षण में ही देखते देखते गंगा जी में डुबकी लगाकर सारा दृश्य अदृश्यता में बदल गया। रथ और ध्वजाओं के सहित अपने अपने लोक में चले गए, कोई देवलोक में और कोई ब्रह्मलोक में, कुछ लोग कुबेर लोक में, कुछ लोग वरुण लोक में और कुछ लोग सूर्य लोक में, कितने ही राक्षस और पिशाचों के लोक में चले गए। इस प्रकार सबको विचित्र विचित्र गतियां प्राप्त हुई और वे देवताओं के साथ अपने अपने वाहनों और अनुचरों सहित आए चले गए। उन सब के अदृश्य हो जाने पर महामुनि व्यास जी ने जल में खड़े खड़े उन विधवा स्त्रियों से कहा, देवताओं, देवियों, तुम लोगों में से जो जो अपने अपने पति के लोक में जाना चाहती हो, वे आलस्य का त्याग करो और तुरंत गंगा जी के जल में गोता लगाओ। उनकी बात सुनकर उनमें श्रद्धा रखने वाली सती स्त्रियां गंगा जी में कूद पड़ी और उनका मनुष्य शरीर से छुटकारा मिल गया और वे अपने अपने पति लोक में चली गईं। इस प्रकार उत्तमशील और पतिव्रत का पालन करने वाली सभी क्षत्रिय बालाएं पतिलोक को प्राप्त हो गई। पतियों के भांति उनके शरीर दिव्य हो गए, उनके वस्त्र, आभूषण, मालाएं सभी दिव्य हो गईं, सारा शोक दूर हो गया और वे समस्त सद्गुणों से संपन्न होकर विमान पर आरूढ़ होकर यथा योग्य स्थान चली गईं। उस समय जिसके मन में जो जो कामना हुई, धर्मवत्सल भगवान व्यास ने सब की पूर्ण की। संग्राम में मरे हुए राजाओं के पुनरागमन का वृत्तांत सुनकर भिन्न भिन्न देश के मनुष्यों को बड़ा आश्चर्य और आनंद का अनुभव हुआ। जो मनुष्य कौरव पांडवों के प्रियजन समागम का यह वृत्तांत भली भांति श्रवण करेगा, उसे इस लोक और परलोक में प्रिय वस्तु की प्राप्ति होगी, अनायास ही इष्ट बंधुओं से मिलन होगा तथा उसका कोई भी दुख और शोक जीवन में नहीं रहेगा। जो विद्वान दूसरे समझदार व्यक्तियों को इस प्रसंग को सुनाएगा, वह इस लोक में यश और परलोक में सदगति को प्राप्त करेगा। स्वाध्याय परायण तपस्वी सदाचारी जितेंद्री दान के द्वारा पाप रहित सरल शुद्ध शांत अहिंसक सत्यवादी आस्तिक श्रद्धालु और धैर्य धारण करने वाले मनुष्य इस आश्चर्यजनक पर्व को सुनकर उत्तम गति को प्राप्त होंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्यावर रामचन्द्र की
जय
मोर मुकुटवंशी वाल्मीकी
जय
अनंत श्री हरि रामदास जी महाराज की अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की आनंद कंद भगवान की जय।